फिर इसी तरह से अगली टिप लेते हैं, गम ना कीजिए, लोगों के साथ एहसान करके नेक नामी कमाएं। जी, एक मौजूद आदमी ने एक शायर के साथ हुस्न सलूक किया और इसकी मुसीबत दूर कर दी, तो उसने उसकी मदह में कहा, यानी जो उसने अशआर कहे उसका उर्दू तर्जमा लीजिएगा, वो ऐसा शख्स है जिसे नौहेजी में अल्लाह ने हुसन अता किया, इसके चेहरे पर कारनामों का जेवर है, इसने बुजुर्गी और शराफत का लुबादा पहन रखा है, गोया कि इसकी पेशानी में मुश्तरी चमकती है, इसकी गर्दन में सुरैया और इसके चेहरे में चांद है। अब जुबानदान था तो बोलेगा तो सही, आप और मैं इन चीज़ों से क्या सीखे, हर एक पे एहसान करना। और आप देखिए कि कुछ लोग आपकी तवक्को और आपके औकात से ज़्यादा ही तारीफ़ करते हैं, तो देखिएगा ज़रा, सूरत बकरा 83 में आता है, और जब हमने बनी इसराइल से वादा लिया था कि तुम अल्लाह के सिवा इबादत न करना और वालदैन के साथ एहसान करना, तो यहाँ बात है एहसान की, हक से ज़्यादा देना। ये अल्लाह ताला के मामले में भी है, बंदों के मामले में भी है। इबादत की सूरत में होगा तो अहसन दर्जे पर नमाज पढ़िए, और मामलात में देखें तो माँ बाप सबसे ज़्यादा हकदार हैं कि आप उनके साथ एहसान का मामला करें। फिर इसी तरह 83 बकरा ही में वालदेन के बाद रिश्तेदारों, मिस्कीनों और बाकी माशरे के साथ अच्छे सलूक की तलकीन है। मुसलमानों को ना सिर्फ ये कि मुसलमानों पर बल्कि गैर मुस्लिम्स के साथ भी एहसान का रवैया अख्तियार करना चाहिए, ताकि इस्लाम की नेक नामी का ज़रिया बने। वो कहेंगे मुसलमान ऐसे होते हैं, कभी किसी गैर मुस्लिम को धोखा ना दें, बाद में वो आपका नाम भूल जाएगा, इस्लाम का नाम याद रखा जाएगा उसमें। और वम ममायन फो नास फयाम को सुफिल अर्दी, जो लोगों को नफ़ा देगा ना वही बचेगा। इसी पे पूरा वीकेंड लग गया इस दफ़ा, अभी भी बात सिर्फ 20% डिलीवर हुई है। अगर आपने वीकेंड के सेशंस नहीं सुने, अगले वीक से पहले सुन लें, आपका फ़ायदा है मेरे फ़ायदे के साथ साथ, क्योंकि आपके अंदर खैर आ जाएगी तो मैं उसको अपनी खैर समझूंगी। तो इंसानियत की खैरवाही करने वालों के नाम इनके बाद भी ज़िंदा रहते हैं, चाहे वो मुसलमान थे चाहे गैर मुस्लिम थे। मैं एडिसन को देखिए, न्यूटन को देखिए, मदर टेरेसा को देखिए, इब्ने सीना को देखिए, अब्दुल सत्तार ईदी साहब को देखिए, जो करना था करके चले गए, आज तक जिक्र खैर मौजूद है। अल्लाह के नबी को देख लीजिए, तो सादिक और अमीन का लकब था नबूवत से पहले ही, वजह आपके आला अखलाक थे और साफ थे, लोगों पर एहसान की रविश थी। आप पढ़ के देखिए हिलफुल फजूल का वाक़या देखिए, अल्लाह के नबी की जवानी का दौर देख लीजिए नबूवत से पहले का, आपको इन सारी बातों की वजह समझ आ जाएगी। फिर जब पहली वही का सिलसिला शुरू हुआ और आपको अपनी जान का ख़तरा लाहक हुआ, जो हज़रत खदीजा ने क्या कहा था, सही बुखारी की रिवायत नंबर 3 में आप पढ़ लीजिए, कहने लगी कि अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा न करेगा, आप तो अख़लाक़े फ़ाज़िला के मालिक हैं, यानी बड़े आला अख़लाक़ है आपके, आप तो कुंबा परवर हैं, यानी ख़ानदानों की टेक केयर करते हैं, बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं, मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं, मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं, और मुश्किल वक्त में आप अमरे हक का साथ देते हैं। अल्लाह एक ही खूबी हमारे अंदर कूट के भर दे। और इसी तरह बुखारी 467 में आता है, एहसान कैसे नेकनामी लाता है, यानी आप दूसरों पर एहसान करें तो आपकी अच्छी शोहरत कैसे होती है। तो अल्लाह के नबी ने मर्ज़े वफ़ात में मिंबर पर फरमाया, कोई शख्स भी ऐसा नहीं जिसने अबू बकर बिन अबू कहाफा से ज़्यादा मुझ पर अपनी जानो माल के ज़रिए एहसान किया हो, और अगर मैं किसी को इंसानों में से जानी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। तो बात यह है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे रहिए, तो बंदों का रब रब्बिन नास आपके साथ अच्छा होगा। अगली टिप लीजिए, मुश्किलातों मसाइल से परेशान ना हो, बल्कि सब्र और तहम्मुल से काम लें। जब सब्र और तहम्मुल आ जाता है ना, तो मुश्किलात छोटी लगती है। शायर कहता है, ऐ जमाने अगर तेरे पास और भी मसाइब हों तो ला इन्हें भी ले आ। याद रखिए, जमाना खुद नहीं लाता, रब लाता है। वला सरिन अल इंसान लफी खुसर, सब्र घबराहट से ज़्यादा आसान है, तहम्मुल दिल छोटा करने से बेहतर है। जो आदमी अपनी मर्ज़ी से सब्र नहीं करता, इसे मजबूरन करना पड़ता है। यानी कह लीजिए कि एक माँ का जुमला याद आ रहा है, इधर बच्चे ज़िद करते हैं ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो वो बोला करती थी, खाना है तो यही खाना है, नहीं खाना तो यही खाना है। ये लिख लीजिए जुमला सब्र के साथ, सब्र तो करना है और अगर नहीं करना तो फिर भी सब्र तो करना है। मतवनी शायर है एक, कहता है कि ज़माने ने इतनी मुसीबतें मुझ पर बरसाई कि मेरा दिल तीरों के हाले में हो गया। जब भी तीर मुझ पर बरसाए जाते तो एक के ऊपर एक तीर लगता और टूट जाता। मैं इसी तरह जिंदा रहा कि मुसीबतों की कोई परवाह नहीं की, क्योंकि इनकी तरफ तवज्जो देने से मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचा। बात तो सच है, तो अपने सीने को खुला करते। अबुल मुजफ्फर कहते हैं, ज़माना मेरे लिए अजनबी बन गया, इन्हें नहीं मालूम कि मैं बाइज्जत हूँ और ज़माने के हादसात से जलील नहीं हो सकता। ज़माना मुझे अपना जुल्म दिखा रहा है और मैं इसे दिखा रहा हूँ कि सब्र कैसे किया जाता है। नोट करिएगा इस चीज़ को, सब्र भी तो दिखाइए ना। लोग थक जाएंगे जुल्म करते करते, आप सब्र करते करते ना थकिए। तो लिखिए ज़रा अपने सामने एक जुमला, साबिर इंसान वर्सेस बेसब्र इंसान। तकाबुल कीजिए, मैं एक तरफ के भी बोल दूँ तो दूसरे आप अपने लिए लिखते जाइए कि मैं साबिरा हूँ कि मैं बेसाबिरा हूँ। कई लोगों का नाम साबिरा होता है और होती वो बेसाबिरा है। आप देखिए, आबिदा इबादत से खूगर है, साइमा है रोज़ों से मोहब्बत, और इसी तरह के। लेकिन रिलैक्सली सोचिए, साबिर इंसान आसाब ठंडे, कूल रिलैक्स्ड। इसके बरक्स बेसब्र इंसान मुसीबत पड़ने पे फौरन घबरा जाता है, कमज़ोर आसाब का मालिक होता है, मसल्स बड़े वीक होते हैं बेसब्रे के। उम्मे मूसा के लिए जब वो मूसा को दरिया में डाल रही थी तो कुरान में आया और मूसा की माँ का दिल उड़ा जा रहा था। वो इसका राज फाश कर बैठती, अगर हम इसकी ढारस न बंधा देते ताकि वो हमारे वादे पर ईमान लाने वालों में से हो जाए। सूरह कसस की आयत 10 है। इसके बरक्स आप देखिए, आम लोग फौरन दिल छोड़ देते हैं, मूसा की माँ ने दिल नहीं छोड़ा। और मूसा की माँ तो दिल में इस राज को रखे रही। इसके बरक्स आप देखिए कि आज एक हार्मोन है जो खतरे और खौफ के वक्त पे निकलता है, जिसम से एड्रेनालिन कहते हैं उसको, ADRENALINE। गैर अहम मौके पर भी जिस्म में पैदा होता रहता है, जो बंदे को इज़्तिराब में मुबतला रखकर इसकी सेहत ख़राब करवाता है। यानी कह लीजिए कि बेसब्रा इंसान अंदर की बातें बाहर निकालता है और उसके मसल्स पुल हो जाते हैं। इसी तरह आप देखिए कि सब्र वाला इंसान कहता है कि आज अगर अल्लाह ताला की तरफ से ढारस कुरान यानी पढ़ने सुनने से मिलती है तो मैं इसको पढ़ता रहूँगा। इसके बरक्स जो बेसब्रा इंसान है वो कुरान पढ़ता तो पढ़ना छोड़ देता है। तो कह लीजिए कि कुरान पढ़ने वाले बेसब्रे नहीं होते। इसके बरक्स बेसब्रे लोग, उनका ब्लड प्रेशर तेज़ होगा, हार्ट अटैक होगा, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ेंगे और नींद ख़राब, वज़न में ज़्यादती और पैनिक अटैक होंगे। अल्लाह ताला आपको मुझे इस गम तकलीफ़ और इस बुरे मामले से बचा दे। करें क्या, तमाम जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियों से बचने के लिए सब्र कीजिए। सब्र कर लेना घबराने से आसान है। खुशी और गम के मौके पे सब्र लाजिम है, क्योंकि मोमिन किसी हाल में भी आपे से बाहर नहीं होता। इसीलिए याद रखिए कि इस्लाम में मातम की ममानियत है। नौहा करना जाहिलियत का काम है, और अगर नौहा करने वाली औरत बगैर तौबा के मर गई तो अल्लाह ताला इसके लिए तार कोल के कपड़े और आग के शोले की कमीज बनाएगा। इब्ने माजा की रिवायत है 1581। तो फिर बात समझ गए हम सब कि अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं करना। मिसाल लीजिए ड्राइवर से, ज़रा सा झटका पड़े और स्टेयरिंग छोड़ दे और ब्रेक से पाँव उठा ले तो क्या होगा। बस इसी तरह के झटके ज़िंदगी में जब पड़ते हैं तो बाज़ुकात इंसान इसी तरह से फिर अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल करता है। तो नेक्स्ट टिप लीजिएगा, आपके दोस्त अहबाब हैं जो अपनी मोहब्बत में सच्चे हैं तो आपको क्या गम। यानी अगर सच्चे लोगों की मोहब्बत आपको नसीब है ना, तो फिर गम ना मनाएं। अच्छे लोग मिल जाना, ज़िंदगी में अच्छे लोगों का आ जाना, उनकी दुआओं का आ जाना, उनकी मोहब्बतों का मिलना बहुत बड़ी खुशी है, इसको इंजॉय कीजिए। चंद अशार का तर्जमा है जिनको पढ़ने से दिल को राहत मिलेगी, और कह लीजिए कि दिल और रूह आपस में मिलेगी। तालीफ अल्लाह फ़युअल्लिफ़ु तालीफ, जुड़ना उल्फत का लफ्ज़ भी इसी से है। शेर क्या है, शायर कहता है, हम यमन की एक कैसी दोशीज़ा के पास उतरे जो सालहीन के ख़ानदान से थी। इसने पर्दा गिराते हुए पूछा, किस सरजमीन से ताल्लुक़ है। देखिए बाहया थी ना, तो हया उसके लहजों से और उसके अमल से झलक रही है। फिर पूछने लगी, अब कौन है? मैंने इसे कहा, मेरा ये दोस्त बनू तमीम से है और मेरा ख़ानदान भी यमनी है। दोनों दोस्त मुख्तलिफ हैं, लेकिन ज़माने ने दोनों में दोस्ती पैदा कर दी है। और ऐसा होता है कि मुख्तलिफ चीज़ें मिल जाती हैं, दोस्त ही दोस्तों को तसल्ली देते हैं। जैसे कुरान में आता है कि मुत्तकीन के अलावा उस दिन दोस्त भी वाहम दुश्मन हो जाएंगे। अजनबी मुसाफिर के बारे में एक शायर कहता है, बिखरे इरादे वाला जिसके पास ना घर है ना घर वाले ना पड़ोसी, बस चलते रहने से मानूस है, हत्ता कि लगता है कि जुदाई के लिए सफरे वतन की तरफ वापसी है। हर वक्त इस चीज़ को सामने रखा करें, किसी वक्त भी वापसी का सफ़र शुरू हो सकता है। तो खुद से कहिए कि अच्छे दोस्तों और साथियों की मोहब्बतों की मौजूदगी में बड़े से बड़े गम की क्या मजाल कि वो मेरे पास भी आ सके। चलिए अपने दोस्तों का जायजा लेते हैं। क्या आपसे मुखलिस हैं आपके दोस्त, या आपकी सहेलियां, या मतलब के रिश्ते हैं उनके आपसे? आपकी मदद के लिए रात को 2 बजे भी आ सकते हैं आपके प्यारे, आपके साथ मुश्किल वक्त में खड़े होते हैं? पर अगर ये सब में यस है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, लेकिन एक सवाल खुद से कीजिए जायजे के तौर पर कि इनका अपना अल्लाह ताला से ताल्लुक कैसा है। और एक सर्वे के मुताबिक जो लोग मुसीबत में अपने पास किसी ऐसे शख्स को नहीं पाते जिसे ज़रूरत के वक्त मदद के लिए बुला सके, इनके डिप्रेशन में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपके इसको एक भी दोस्त या रिश्तेदार ऐसा है जो आपके साथ हर मुश्किल में खड़ा हो, तो गम छोड़ दीजिए, ला तहज़न, गम न करें। इसी तरह देखिए कि सच्चे और मुखलिस दोस्त ना सिर्फ ये कि दुनिया के खैरख्वाह होते हैं, बल्कि वो आपकी आखिरत के भी खैरख्वाह होते हैं। आपको जहन्नम की आग से बचाने की सही करते हैं। और सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत 67 हमने देखी थी कि गहरे दोस्त भी क़्यामत के दिन दुश्मन बन जाएंगे सिवाय तकवा वालों के। यानी क़्यामत के दिन गहरी दोस्तियाँ ख़त्म होंगी जो गुनाहों और सिर्फ गलत चीज़ों पर ही थी। दुनिया के गमों पर तसल्ली देने वाले आखिरत के लिए भी फिक्र देते हैं, और यही तो लोग हैं जो क़यामत के दिन साथ होंगे। और अल्लाह के नबी के दो प्यारे साथियों का नाम न लिया जाए तो बात पूरी नहीं होती। एक थे अबू बकर और एक थे उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हुमा। दोनों को देखिए, दुनिया में भी साथ और आगे भी साथ, कब्रें भी साथ साथ, दफन भी साथ और उठाए भी साथ ही साथ जाएंगे। अगर आपके पास ऐसी साथी ऐसे दोस्त नहीं हैं जो फिक्र आखरत रखते हों, तो आप इनके लिए ऐसी दोस्त बन जाइए। इनमें खैर होगी तो अल्लाह दिलों को और जोड़ देगा। और एक रिवायत भी सुन लीजिए सिलसिले सहीहा की 333 अब्दुल्ला बिन अमर से। अल्लाह के यहाँ बेहतरीन दोस्त वो है जो अपने दोस्त के नज़दीक बेहतरीन है, और अल्लाह के यहाँ बेहतरीन पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी के लिए बेहतरीन है। अपने ऊपर लीजिए, क्या वाकई मैं अपनी दोस्तों की ऐसी दोस्त हूँ? और आपने फरमाया कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, बस तुम में से हर शख्स को ये देखना चाहिए कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। अबू दाऊद की रिवायत है 4833। तो इन हदीसों पे गौर व फिक्र करते वक्त हमें अपनी दोस्तों को और ख़ुद को भी देखना है। क्या सीखा? अल्लाह ताला पर भरोसा और तकदीर के लिखे पर सब्र करना है। दोस्त अहबाब से इखलास ये है कि इनकी दुनिया के साथ साथ आखरत की भी परवाह की जाए। लोगों पर दीन और दुनिया के मामले में एहसान करना है। सब्र करना है घबराने से ज़्यादा आसान है। बेवजह घबरा कर अपनी तबीयत ख़राब नहीं करनी, बुरे दिनों के बाद अच्छे दिनों की उम्मीद रखनी है। चंद सेकंड खामोश रहती हूँ, ज़रा सा अपना मुहासबा कीजिए। यकीनन अपने मुहासबे से आपको फ़ायदा हुआ होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम सिर्फ सुनते ही रहते हैं ना, सुनते ही जाते हैं, तो बस ऐसे ही लगता है कि बस ऐसे ही था और यही था और यही कुछ था। तो इस मुहासबे के बाद फिर अपने बारे में फिक्र करने के बाद एक और टिप लीजिए, और वो क्या है? गम ना करें जब कोई आपको रोक दे, या आपके चेहरे में दुश्रवि पैदा हो जाए, या कोई बखील मना कर दे। ज़िंदगी में हमारे गम अमूमन इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूमते हैं। सुफियान सॉरी कहते हैं, जिस मालो ज़र को लोग दरवाजे के पीछे छुपा कर रखते हैं, आपको नमक और पानी और रोटी इसके बदले में काफ़ी है। ठंडा पानी पीजिए और रोटी खाइए, बेहतरीन शरीर बड़ा आला खाना होता है जिसको आप अपने कल्चर की हलीम कह लीजिए। बेहतरीन सरीद खाने वालों के बराबर हो जाएंगे। बात कितनी सच्ची है, आपने अगर गौर नहीं किया तो बाद में करवाती हूँ इस पे गौर। इसी तरह लकड़ी का झोंपड़ा, ऊन का खेमा और जौ की रोटी, नफ्स की इज्जत, आबरू की हिफाजत और शर्मो हया के तहफ्फुज़ के साथ ज्यादा बाइज्जत और ज्यादा बुलंद है शानदार महल और पुरबहार बाग से, जिसके साथ मैल और गदलापन हो। आजमाइश मरस की तरह है, कुछ दिन के बाद वो खत्म हो जाएगी। इसके जल्दी से जायल करने और इसे बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं। जो शख्स मुब्तलाए मुसीबत हो, इसका फर्ज है कि सब्र के साथ कुशादगी का इंतजार करे और बराबर दुआ के तरीके पर गामजन रहे। तो जरा से इस पे गौर करते, बहुत बड़ी बात है। आपको रोटी और पानी और तिनकों की झोंपड़ी मिल जाए और इसमें आपकी इज्जत हो तो बहुत फायदा होगा। गम ना करें, अल्लाह ताला ने हर इंसान का रिस्क मुकरर किया हुआ है, किसी को खुद देता है, किसी का हिस्सा किसी साहिब सरवत के माल में डाल देता है। एक बहुत बड़े सवाल का जवाब है कि अल्लाह कुछ लोगों को अमीर और कुछ को गरीब क्यों बनाता है। तो जवाब ये है कि कुछ को अल्लाह सीधा दे देता है और कुछ का दूसरों को देता है कि तुम दो। जब अमीर लोग सदके और खैरात रोक लेते हैं और अपने माल को अपनी ख्वाहिशों में ही पूरा करने के लिए लगाने लगते हैं ना, तो फिर गुर्बत होती है। जो हमें एक्स्ट्रा मिलता है हम सोचते हैं ये बैंकों में रखने के लिए और प्लॉट्स ले लेके डालने के लिए और बच्चों की शादियों पे ज़ाया करने के लिए, क्योंकि ज़ाया किधर करें, माल डालें किधर। तो याद रखिए कि आपका माल आपका नहीं है, अल्लाह ने दूसरों का आपको दे दिया। कभी कभी होता नहीं पर हेड चीज़ है बांटो, अच्छा इतनी ये आप इनको बांट दें या आप इधर बांट दें, बड़े से मजमे में 100 किताब बढ़ जाएगी। इसी तरह कभी कभी आपको एक ही बजाय दो तीन मिल जाती हैं तो आपको परस भी नहीं रखनी होती, अपने इर्द गिर्द बैठों को देनी चाहिए, क्योंकि पर हेड है सबके लिए एक एक रखी होगी। तो ज़िंदगी का ये असूल बनाइए कि अपनी एक्स्ट्रा चीज़ों को शेयरिंग में लगा दें, कर्ज में दे दीजिए कि आप इससे फ़ायदा उठा ले बाद में मैं ले लूँगी, और इसी तरह सो ऑन। फिर इसी तरह आप देखिए कि उमरा जो ज़कात और सदक़ात देते हैं ये गुरबा का हक होता है। अगर कोई बखील गरीबों का हिस्सा नहीं देता वो अपना नुकसान करता है। इसी तरह देखिए कि मदीना के यहूद और मुनाफिकीन भी कहा करते थे कि हम क्यों खिलाएं उनको जिनको अल्लाह नहीं खिलाता। सूरह यासीन का जुमला है, बिल्कुल यही जुमला है कि हम उनको क्यों खिलाएं जिनको अल्लाह ने ना दिया। तो कम मिला है तो राजी रहिए, मांगने वाला हाथ ना बने, और ज्यादा दिया है अल्लाह ने तो दूसरों से शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ऊपर का हाथ खर्च करने वाले का है और नीचे का हाथ मांगने वाले का है। बुखारी की रिवायत है 1429। और इसी तरह से आप चटनी से रोटी खाकर भी गुजारा कर लें तो इंजाम इस रोटी का भी वही होगा जो किसी अमीर के महंगे से महंगे खाने का होगा। जो आपको दिया गया इस पर मुतमईन रहें और कुशादगी की दुआ करते रहें। अच्छे दिनों का इंतज़ार भी इबादत है। और इसी तरह एक रिवायत सिलसिला सहीहा में 1850, जो कम है और किफ़ायत करने वाला है वो इससे बेहतर है जो ज़्यादा है लेकिन गाफिल करने वाला है। अब ये आपके मेरे इख्तियार में है। चलिए फिर ज़रा सा खुलासा करें, एक वक्फ़ा लेते हुए दिल दिमाग को मज़ीद बातों को सुनने और सुनाने से ज़्यादा पिछली बातों को रिकॉल करने पे गुजारिए। चंद आयतें कुरान की आपके मेरे सामने आ जाती हैं जब हम कभी मायूस होने लगते हैं। मसलन, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, इसकी रहमत से तो कुफार ही मायूस होते हैं। अपने रब की रहमत से गुमकर्दा राही से मायूस होते हैं, और बेशक अल्लाह की रहमत मुहसिनीन के करीब है। तुम नहीं जानते कि अल्लाह इसके बाद मुमकिन है कोई मामला पैदा कर दे, जी सूरत तलाक की पहली आयतों में से ही है। और मुमकिन है कि जिसे तुम बुरा समझो वो अच्छा हो, जिसे तुम अच्छा समझो वो तुम्हारे लिए बुरा हो, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते, सूरह बकरा की आयत 216 है। और अल्लाह अपने बंदों के साथ मेहरबान है, और अल्लाह खुद कहता है मेरी रहमत हर चीज़ को वसी है, यानी छा गई मेरी रहमत हर चीज़ पे। घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है, जो आप पर मैं कर रहे हैं। ला तहज़न इन्नल्लाह माना। और जब तुम अपने रब से दुआ कर रहे थे और इसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली, अल्लाह के नबी की कैफियत सूरत अनफाल में आयत नंबर 9 में आती है। फिर इसी तरह वही है जो आसमान से बारिश नाजिल करता है, मायूसी के बाद अपनी रहमत को बखेर देता है। इसी तरह से रग़बत और खौफ से वो हमें पुकारते थे और हमसे डरने वाले थे, अम्बिया कराम की सिफात है। अब इतनी चीज़ें आपके पास हों, इतनी तसल्ली भरी आयतें आप पढ़ते हैं और समझते हों, तो फिर आपको गम किस बात का होगा? आपकी ज़िंदगी में फिर तकलीफ़ और गम और मसला ऐसी चीज़ें तो होंगी भी नहीं। शायर कहते हैं, अगर तुम अपने मिजाज से राजी ना हो तो दुनिया तुम्हारे लिए खुशगवार कैसे हो सकती है। दुनिया का कीमती गौहर आबदार नमकीन समंदर से निकाला जाता है, कितना नमक होता है उसमें, फिर भी वो देख लीजिए गौहर यानी पल बन के निकलता है। बहुत सी खौफनाक चीज़ें तुम्हारे लिए मुसर्रत और खुशी लेकर आती हैं, कितनी ही सलामती ममानियत के बाद मिलती है, और बहुत सी चीज़ें कजी के बाद दुरुस्त होती हैं, पहले टेढ़ी होती है फिर बाद में सीधी होती है। तो क्या सोचा आपने इन चीज़ों को सुनने और गौर व फिक्र करने के बाद कि अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना? आप देखिए कि यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में मायूस नहीं हुए, ज़करिया बुढ़ापे में औलाद की दुआ करते रहे और नाउम्मीद नहीं हुए, अय्यूब अलैहिस्सलाम शदीद बीमारी में रब से मायूस नहीं थे। अल्लाह से मायूस होना शैतान की सिफत है जिसका नाम इबलीस है, सख्त मायूस बाला सैयब इबलीस इबलास। तो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना, ये सीखा है इस हमने वक्फे में। लम अकुम बि दुआई का रब्बी शकिया, अंबिया कराम ये दुआएं मांग मांग कर अपने अकीदे को खोल देते थे कि अल्लाह से मांग कर फिर बंदा मायूस हो तो क्यों हो।